بالظبط كده. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. درس خاص میں ہم امور خانداری میں حسن انتظام کی کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں، اور اس میں سے جو مضمون چل رہا ہے وہ ہے رشتہ داریاں نبھانا، یعنی ریلیشن شپ مینجمنٹ. تو اس میں ہم نے اب تک رشتے کو قائم رکھنے والی تین کہ لسن کیئرفلی، کہ اگلے بندے کی بات کو آپ توجہ سے سنیں، ڈٹرمن فیلنگس، اس کے جو احساسات ہیں ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، یعنی جو وہ بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو اس کے یعنی اس میں جذبات اور احساسات کیا ہیں. اور تیسرا نقطہ یہ تھا کہ بات کے اصل معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں، انڈرسٹینڈ ریئل میننگس، ٹھیک ہے، یعنی اس کے ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں کہ کیا وجوہات ہیں ایسے وہ یہ بات کر رہا ہے یا کر رہی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دل اور جذبات کا ایک سائنسی کی ایک سائنسی تحقیق پڑھی تھی کہ انسان کا دل جو ہے وہ محض ایک خون کو آگے بھیجنے والا پمپ نہیں ہے، بلکہ یہ جذبات کو کنٹرول کرنے والی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے. اور اب جو ماڈرن سائنس ہے وہ بھی اس کے اوپر متفق ہو چکی ہے اپنے تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر کہ دل کی اپنی ایک کارڈیو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ بھی ہوتی ہے. پہلے تو انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ انٹرا کارڈیک نروس سسٹم ہوتا ہے. نروس سسٹم میننگ نروس سسٹم ہی کا مطلب ہوتا ہے برین، ٹھیک ہے، کیونکہ برین جو ہے وہ نروس سسٹم کا مرکز ہوتا ہے. تو اسی طرح کا ایک نروس سسٹم جو ہے وہ دل کا بھی ہوتا ہے. پھر اس دل کے گرد ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک دل جو ہے وہ کسی دوسرے دل کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے. اور اس کے تحت پھر ہم نے صحبت کے موضوع کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. پھر اس کے بعد جو موضوع چل رہا، جو اصل موضوع تھا یعنی کمیونیکیشن کا، ریلیشن شپ مینجمنٹ کا، تو اس کے اوپر حضرت واپس آئے تھے. تو ہم نے پھر اس میں سے جو پہلا عنوان تھا خاوند سے تعلق، تو اس کو پڑھنا پچھلی کلاس کے اندر شروع کر لیا. تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کمیونیکیشن کو یعنی اظہار مدعا کو بہتر بنائیں، ٹھیک ہے، جب خاوند سے بات چیت کریں تو ایکسپریس یور فیلنگس اینڈ نیڈس افیکٹولی، ٹھیک ہے. تو اگرچہ کہ یہ ہم موضوع جو پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے یہ عورتوں کی کلاس ہے، خواتین کی، اور یہ خواتین کے ہی امور خانداری کے موضوع سے متعلق ہے، اور پھر اس کے اندر بھی یعنی ایون خواتین کے اندر بھی یہ خاص کر جو ہے وہ جو شادی شدہ خواتین ہیں انہی سے متعلق پھر ڈسکشن چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس کی شادی ہوئی بھی ہوگی اسی کا خاوند ہوگا، لیکن جس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا خاوند کہاں سے آئے گا. تو ویسے تو یہ دیکھا جائے تو یہ بڑی ہی ریسٹرکٹڈ قسم کی اور بہت ہی نیرو ڈاؤن قسم کی یہ ڈسکشن ہے کہ خاوند کے ساتھ تعلق، ٹھیک ہے. لیکن جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے کلاس کے اندر سمجھایا تھا کہ خاوند کی ڈیفینیشن، ون آف دی ڈیفینیشنز جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قرآن مجید کے اندر بتائی ہے، تو وہ یعنی اس انداز سے بتائی ہے کہ بھئی خاوند جو ہوتا ہے اس کا ایک ہائر رول ہوتا ہے گھر کے اندر بھی और सोसाइटी के अंदर भी अर्रिजालु कवामून अला नसा, ठीक है। तो इस आयत को, अर्रिजालु कवामून अला नसा को जो है वो अगरचे के खास तौर पर बीवी शौहर के रिलेशनशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, समझाया जाता है कि भाई शौहर का जो है वो एक अपर हैंड है बीवी के ऊपर, मतलब ये कि ज्यादा जिम्मेदारियां हैं और उसके पास अल्लाह ताला ने ज्यादा एक्सपोजर और ज्यादा उसको बनाया है कि उससे सवाल किया जाएगा वगैरह, लेकिन साथ साथ बीवी के लिए भी है कि भाई वो भी डिसिप्लिन के साथ जो है वो उसकी बात को तस्लीम करते हुए अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन इसी इसी इक्वेशन को, यानी इसी रिलेशनशिप को जो कि खाविंद और बीवी की रिलेशनशिप होती है, इसी को एक्सपैंड भी किया जा सकता है, ठीक है, इसी को इससे बढ़ाया भी जा सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी जो इंसानी मुआशरा बनाया है तो उस पूरे इंसानी मुआशरे में अल्लाह ताला ने यही निजाम रखा है कि किसी को किसी के ऊपर अल्लाह ताला ने फौकियत दी है, ठीक है। और वो फौकियत जो है वो इंतजामी नौइयत की है, इल्मी नौइयत की है, हत्ता के अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक होता है जिसको के तकवा कहते हैं, तकवा का ताल्लुक, तो उस नौइयत की भी, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने लोगों को दूसरे लोगों के ऊपर किसी ना किसी निस्बत से फौकियत दी है, ठीक है। क्या मतलब कहने का कि अल्लाह ताला ने बजाहिर तो इंसानों को एक जैसा बनाया है ना, सारे इंसान एक जैसे हैं ना, सारे इंसानों का एक सर होता है, कोई इंसान ऐसा नहीं होता जिसके दो सर हो, ठीक है। और उसी एक सर के अंदर जो सब इंसानों के पास होता है उसमें जो है वो हर इंसान को अल्लाह ताला ने दो आंखें अता फरमाई, राइट, एक नाक अता फरमाई और एक मुंह अता फरमाया, ठीक है, दो कान अता फरमाए, वैसे ही जो है वो आंखों की स्ट्रक्चर होती है सारे इंसानों की, ठीक है, वैसे ही मुंह का होता है, नाक का होता है, कान का होता है। उसके बाद फिर सर से अगर आप नीचे आए तो फिर जो इंसान का जिस्म होता है वो भी सारे इंसानों का एक ही जैसा जिस्म बनाया ना, ठीक है, दो ही हाथ होते हैं, किसी इंसान के तीन हाथ नहीं बनाए, किसी इंसान के 10 हाथ नहीं बनाए, ठीक है, पैरों का भी यही मामला है, दो ही पैर बनाए, सारे इंसानों के दो पैर बनाए, ठीक है। तो ये तो देखने में सारे इंसान एक जैसे लगते हैं, उसी तरीके से जो बजाहिर काम काज होते हैं, चलना फिरना होता है, वो भी सारे इंसान एक जैसे ही, ठीक है, सारे इंसान ही जमीन पर चलते हैं, कोई हवा में नहीं उड़ता, ठीक है। किसी इंसान को अल्लाह ताला ने दो हाथों के साथ पर टाइप की कोई चीज नहीं दे दी कि जिससे कि वो हवा में उड़ जाए, ठीक है। हत्ता के किसी इंसान को अल्लाह ताला ने पानी में चलने की सलाहियत अता नहीं फरमाई, ठीक है, कि भाई तुम्हारे पैर जो है ना वो मैंने ऐसे बना दिए हैं कि तुम पानी में चल सकते हो, जैसे कि डक्स के पैर अल्लाह ताला ने बनाया, ठीक है, और डक्स का इस किस्म का फिजिकल स्ट्रक्चर बनाया कि वो पानी के अंदर भी आराम से तैरना ही पड़ेगा, तुम जैसे भी, यानी तुम जो भी हो, इंसान हो, तुम्हें पानी में अगर आगे बढ़ना है ना तो तुम्हें तैरना पड़ेगा, उसके बगैर तुम पानी में आगे नहीं बढ़ सकते। कहने का मकसद क्या है ये सारी बातें कि अल्लाह ताला ने फिजिकली स्पीकिंग हर इंसान को दूसरे इंसान के जैसा बनाया है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत अगर फर्क रखा भी है अल्लाह ताला ने तो मर्दों और औरतों के दरमियान रखा है, और कोई फर्क नहीं रखा, ठीक है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने तरतीब बनाई, इंसानी मुआशरे की तरतीब बनाई, उसमें ऐसा नहीं किया कि सारे इंसान जो है ना वो बराबर हैं, किसी को किसी के ऊपर फजीलत नहीं, किसी को किसी के ऊपर फौकियत नहीं, ऐसा नहीं किया अल्लाह ताला ने, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने इंसानों के मुआशरे के अंदर तकवा के एतबार से इंसानों को फौकियत दी दूसरे इंसानों के ऊपर, ठीक है। कुरान मजीद के अंदर हम सभी ये जानते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अकरमकुम इंद अल्लाह अतकाकुम, ठीक है, कि अकरमकुम तुम में से ज्यादा इज्जत वाला, इकराम वाला तुम में से कौन है जो कि तुम में ज्यादा तकवा वाला है। अब ये तकवा वाला जो 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 बात है अल्लाह ताला ने जो कही है, तो ये क्या इंसान के जिस्म पे नजर आती है कि भाई जो तकवा वाले साहब होते हैं या साहिबा होती हैं उनके दो सर हो जाते हैं, राइट, या उनके चार हाथ हो जाते हैं, क्योंकि ये तकवा वाले हैं तो अब ये मुख्तलिफ हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तकवा चाहे किसी का कितना ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, फिजिकली वो वैसे ही रहता है जैसे बाकी इंसान रहते हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा तकवा वाले कौन थे? अल्लाह ताला के नबी थे, ठीक है। तो नबियों के चार हाथ तो नहीं थे, नबियों के चार सर तो नहीं थे, नबियों की चार आंखें तो नहीं थी, ठीक है ना। वो वैसे ही इंसान थे ना जैसे बाकी इंसान है। तो किस बुनियाद पर वो ज्यादा फजीलत वाले बने? कि अल्लाह ताला ने उनके कुछ सिफात की बुनियाद पर उनको इज्जत अता फरमा दी दूसरे इंसानों के ऊपर, ठीक है, और दूसरे इंसानों को कह दिया कि भाई आप इनकी बात माने, ठीक, इनसे जो है वो सीखें और इनके जो है वो पीछे पीछे चले। फत्तबे सबील मन अनाब इलैया, कि तुम उन लोगों की तरीके के ऊपर चलो, पीछे पीछे चलो जो मेरी तरफ इनाबत करने वाले हैं, रुजू करने वाले हैं। भाई तकवा क्या चीज होती है? अल्लाह की तरफ रुजू करना, ठीक है। जैसे कि रुजू करना वाकई है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में दरस कुरान की क्लास में समझाया था कि रुजू करने का क्या मतलब होता है, राइट। तो जो वैसे रुजू करता है अल्लाह की तरफ तो वो तकवा ही वाला होता है ना, ठीक है। तो बाकी इंसानों को हुक्म दे दिया तुम इनकी इत्तबा करो, ठीक है। उसी तरीके से अल्लाह ताला ने इल्म की बुनियाद पर इंसानों में तफरीक कर दी, ठीक है, कि इल्म वाले जो है ना ये अफजल हैं, इनको जो है वो हुक्मरानी मिलेगी, इनको जो है वो सियादत मिलेगी, ठीक है, इनको जो है वो लीडरशिप मिलेगी, ठीक है, और बाकी लोगों को इनकी बात माननी पड़ेगी, बाकी लोगों को इनका हुक्म मानना पड़ेगा। अब जो अंबिया होते हैं वो इल्म वाले भी तो होते हैं ना, सबसे ज्यादा इल्म वाले कौन होते हैं? अंबिया होते हैं, ठीक है ना। तो इल्म वाले जो हैं उनके भी कोई 10 हाथ तो नहीं आ जाते ना, उनकी जुबान जो है वो कोई 2 गुनी लंबी जुबान नहीं हो जाती, उनके जो है वो 4 कान नहीं आ जाते, ठीक है ना। फिजिकली तो वो भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे वाकई इंसान, लेकिन इल्म की ऐसी फजीलत है कि जो कि अल्लाह ताला ने मुतय्यन कर दी कि भाई इल्म वाले को फजीलत हासिल है, इल्म वाले की बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो तफरीक अल्लाह ताला ने करी है इंसानों के दरमियान, ये फिजिकल तफरीक नहीं करी है, बल्कि अल्लाह ताला ने किसी एक सिफत की बुनियाद पर, किसी एक सिन्फ की बुनियाद पर जो कि बजाहिर नजर नहीं आती, बजाहिर नजर नहीं आती, ठीक है, इल्म किसी इंसान के ऊपर नजर नहीं आता, ठीक है ना, कि उसकी उसकी कानों से जो है वो किताबें लटकनी शुरू हो जाएं, किताबें अगर लटकनी शुरू हो जाएं तो फिर वो नजर आएगा ना कि हाँ भाई ये किताबों वाला है, राइट। उसी तरह तकवा, किसी की आंखों के अंदर तकवा नजर आना शुरू हो जाए, नेकियां नजर आनी शुरू हो जाए आपको उसकी आंखों में देख करके, नेकियां नजर आनी शुरू हो जाए, ठीक है, गुनाहों से नफरत उसकी आंखों में नजर आनी शुरू हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, ठीक है। तो ये फौकियत किसने दी है? अल्लाह ने दी है, ठीक है। तो उसी तरीके से बाप को औलादों के ऊपर फौकियत दी, हालांकि बाप और औलादों में भी कोई फिजिकल फर्क नहीं होता, औलादें भी बिल्कुल वही फिजिकल स्ट्रक्चर रखती हैं जो कि बाप रखता है, ठीक है, जो कि माँ रखती है, लेकिन अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया कि जी जो माँ बाप है, ठीक है, वो औलादों से फौकियत रखते हैं, ठीक है। अब वो जो इंतजामी उमूर के अंदर या तरबियती उमूर के अंदर शरीयत के दायरे में रहते हुए अपनी औलाद को हुक्म करें या कहें, औलाद को बात माननी, ठीक है ना, हालांकि माँ बाप भी वैसे ही इंसान होते हैं जैसे कि औलाद होती है, ठीक है। तो उसी तरीके से खाविंद और बीवी का भी मामला है, ठीक है, खाविंद के पास भी जो होते हैं वो 4 पैर नहीं होते, ठीक है ना, वो भी कोई ऐसी इस किस्म की कोई क्या कहते हैं ऐसी कोई इंसान नहीं होता कि जिसको देख करके जो है वो आपके दिल के ऊपर एक अजीब वगरीब किस्म की एक रोब वाली कैफियत पैदा हो जाए, ठीक है, या आपके ऊपर जो है वो खौफ वाली कैफियत पैदा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता ना कि अच्छा खौफ आ रहा है इस बंदे से, रोब हो गया, यानी कोई अजीब वो बला किस्म की, बला बला कहते हैं ना उर्दू के अंदर, ये बला आ गई है कोई, ठीक है। तो वो ऐसी कोई बला नहीं होता कि जिसको देख करके आप थर थर कांपना शुरू हो जाए और अब उसकी इत्तबा करना शुरू हो जाए, उसकी बात मानना शुरू हो जाए। एक क्यों बात माननी है? अल्लाह ने कहा है, ठीक है, अल्लाह ने बनाया है, ठीक है। तो ये सारा तकवा की बुनियाद पर किसी की बात माननी है, किसी की इत्तबा करनी है, अल्लाह ने कहा है, वरना तकवा उसका अपना फेल है, जाती फेल है, वो खुद ही जन्नत में जाएगा ना। अगर वो तकवा इख्तियार कर रहा है खुद ही जन्नत में जाएगा, मुझे क्या इससे भाई कि वो तकवा वाला है कि तकवा वाला नहीं है, मैं क्यों उसकी इतबा करूं। वो ये कह सकते हैं ना, मैं क्यों उसकी इतबा करूं भाई, वो तकवा कर रहा है तो वो जन्नत में खुद ही जाएगा, मुझे तो नहीं लेके जाएगा ना, राइट। लेकिन मेरे अल्लाह ने कह दिया कि तकवा वाले की जो है वो तुमने इतबा करनी है, इस वजह से मुझे इतबा करनी, राइट। उसी तरह इल्म वाला, अल्लाह ताला ने निजाम बना दिया कि इल्म वाले की जो है वो तुमने अतात करनी है, ठीक है, तो अब मुझे अतात करनी है। इसलिए नहीं कि इल्म वाला जो है वो मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहा है या उसका कोई अलग कोई मेरे साथ कोई मुआ, भाई वो उसका अपना इल्म है, उसके इल्म से उसको अपना फायदा हो रहा है, लेकिन मुझे उसकी अतात क्यों करनी है, अल्लाह ने कहा है, ठीक है। कहने का मकसद क्या कि असल अहमियत जो है ना वो क्या है, अल्लाह के लिए काम करना, ठीक है। तो ये इत्तेबा भी जो करनी है किसी दूसरे इंसान की जो कि मेरे ही जैसा इंसान है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है अल्लाह के लिए करनी, अल्लाह ने कहा है के लिए, तो अल्लाह ने कहा है कि वजह से जब कोई काम किया जाता है तो इसी को कहते हैं लिल्लाह, लिल्लाह अल्लाह के लिए, ठीक है। तो खाविंद की भी के साथ भी जो ये मामला करना है क्यों करना है, अल्लाह के लिए। माँ बाप के साथ जो ये मामला करना है क्यों करना है, अल्लाह के लिए। इल्म वालों के साथ अतात वाला मामला करना है तो क्यों करना है, अल्लाह के लिए, ठीक है। अल्लाह ताला ने आपकी बरकत से एक बात दिन में डाली अभी, जिस वजह से ये सारी की सारी डिस्कशन हुई कि कल हम अल्लाह ताला की मेहरबानी से उम्रे के सफर पे रवाना हुए, अभी तक पहुंचे नहीं है, रास्ते में, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने हजरत की एक एक बयान सुनने की तौफीक अता फरमाया, अता फरमाई, ठीक है। तो उस बयान में हजरत ने इस एक आयत के ऊपर पूरा बयान किया, इस एक आयत के ऊपर, कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं वह अतिमुल हज्जता वल उम्रता लिल्ला, कि हज करो और उम्रे करो अल्लाह के लिए, हज करो और उम्रे करो अल्लाह के लिए, ठीक है। सैरो सियाहत के लिए ना करो, छुट्टी मनाने के लिए ना करो कि चलो मैं बहुत बोर हो गया था एक ही तरह से जिंदगी गुजारते गुजारते, चलो अब हज उमरा करने के लिए चलते हैं ताकि एक छुट्टी मिल जाएगी मुझे अपनी डेली रूटीन से, ठीक है ना। जो है वो किसी के ऊपर फखर जतलाने के लिए हज और उमरा करो कि मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं हाजी हो गया, मैंने इतने हज कर लिए, मैं इतने सालों से हर साल हज कर रहा हूं और मैं हर साल इतने सारे उमरे करता हूं, इसलिए नहीं उमरे करो बल्कि अल्लाह के लिए करो। और जैसे कि फरमाया कि मेरी उम्मत के गरीब लोग जो है वो भीख मांगने के लिए, लोगों से सवाल करने के लिए उम्रे किया करेंगे और हज किया करेंगे, जैसे कि आजकल बहुत बड़ा मसला बना हुआ है सऊदी अरब के अंदर कि बहुत बड़ी तादाद में फकीर आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान से आ रहे हैं, राइट। गुनाह करेंगे, अल्लाह ताला से वादे करेंगे कि हम आपके नाम पे मुल्क बना रहे हैं और हम उस मुल्क में आपका निजाम चलाएंगे, और फिर उस वादे को तोड़ देंगे, जैसे पाकिस्तान में सबने किया, सबने किया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, सिवाय चंद अल्लाह के बंदों के, और सबने यही किया कि अल्लाह से वादा किया और फिर उस वादे को तोड़ दिया। हिंदुस्तान वालों ने ये काम नहीं किया था कि हम जो है वो अल्लाह के नाम पर एक मुल्क बनाएंगे और वहां पर अल्लाह का निजाम चलाएंगे, तो हिंदुस्तान वाले इस चक्कर इस मसले में पाकिस्तान वालों से बेहतर है, ठीक है, कि उन्होंने अल्लाह से ये वाला वादा करके उसको तोड़ा नहीं है, बाकी वादे तोड़ रहे हैं, झूठ बोलते हैं, धोखे देते हैं, जुल्म करते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करते हैं, हिंदुस्तान वाले भी सारे करते हैं, इल्ला माशाल्लाह, एक्सेप्शन तो हर जगह है ना, लेकिन हिंदुस्तान वाले भी अल्लाह के हुक्मों को खूब तोड़ते हैं, पाकिस्तान वाले भी खूब तोड़ते हैं, लेकिन फर्क क्या है हिंदुस्तान और पाकिस्तान वालों में, ये पाकिस्तान वालों ने बहैसियत मजमुई मुल्क बनाते हुए अल्लाह ताला से एक वादा किया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है कि जितने आपके अहकामात हैं हम उन सब की पाबंदी करेंगे, ये है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब। तो इज्तिमाई शक्ल में ला इलाहा इल्लल्लाह का वादा किया था, उसको तोड़ दिया, 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने दुनिया में भी रुसवा करके रखा हुआ है, आखिरत को तो अल्लाह ताला जानते हैं क्या मामला, ठीक है। तो इस वक्त जो सबसे ज्यादा बुरे हालात चल रहे हैं फाइनेंस, ये इकोनॉमिकली पाकिस्तान के चल रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम कहते थे ना दो टके का भी नहीं है। तो कहने का मकसद क्या होता था कि जो टका है ना बांग्लादेश की करेंसी, तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, टका। ठीक है, अब बांग्लादेश की करेंसी जो है वो आपकी करेंसी से कई गुना ज्यादा अच्छी हो गई है। ठीक है, उसी तरह दूसरे भी पड़ोसी मुल्क हैं, उनकी भी करेंसी आपकी करेंसी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। आपकी सबसे ज्यादा नीचे क्यों जा रही है, आपकी इकोनॉमी का सबसे ज्यादा बुरा हाल क्यों है, आपकी जो है वो अमन अमान का सबसे ज्यादा बुरा हाल क्यों है। आपने अल्लाह से हुक्म की, अल्लाह के हुक्म की नहीं बल्कि अल्लाह से वादा खिलाफी की हुई है। तो इस वजह से पाकिस्तान से जो है वो भिखारी आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, और फिर यहाँ पे आकर के हज और उमरे के ऊपर आपको, बल्कि हज और उमरा खाली नहीं, पूरे सऊदी अरब के अंदर रियाद शहर तक जो है वो भिखारी भरे हुए होते हैं। पाकिस्तानी इंडियन भी होते हैं लेकिन पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं। ये तो अल्लाह ताला के साथ वादा तोड़ने की सजा है। ठीक है, तो उमरा करने के लिए आते हैं लेकिन भीख मांगने के लिए, भीख मांगने की नीयत से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वह अतिमुल हज्जता वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए करो। ठीक है, तो ये जितना अल्लाह ताला ने अपने इंसानों का जो मुआशरा बनाया है ना, इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो भी तफरीक रखी है वो सब इसीलिए रखी है कि अब तुम इस बुनियाद पर नहीं कि दूसरा इंसान जो है वो कोई दियो नजर आता है, वो कोई बला नजर आती है जिससे थर थर कांपते हुए तुम उसकी अतात कर रहे हो या उसकी बात मान रहे हो या उसके ताबे रह करके जिंदगी गुजार रहे हो, इसलिए नहीं, बल्कि मैंने सबको बराबर बनाया है, सबको एक जैसा बनाया है। ठीक है ना, लेकिन अब उनमें से मैं जिसको कह दूं कि तुम इसकी इत्तबा करो, तुम मेरी खातिर उसकी इत्तबा करो, तुम मेरी खातिर उसकी इत्तबा करो, तुम मेरी खातिर उसकी अतात करो, तुम मेरी खातिर उसके साथ अच्छे से जिंदगी गुजारो, और तुम मेरी खातिर उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन करो, तुम मेरी खातिर उसके साथ अच्छी कम्युनिकेशन करो। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में इस मकसद से भेजा है। ठीक है, इस मकसद से भेजा है, मेरी खातिर जिंदगी गुजारो। ठीक है, तो जिसको ये बात समझ में आ गई, जो हमने कितनी देर में ये बात समझाने की कोशिश करी है, मेरे ख्याल में 25 मिनट तक या 20 मिनट कम से कम, तो जिसको ये बात समझ में आ गई ना, तो उसकी दुनिया भी बन गई, उसकी हमेशा हमेशा की आखिरत की जिंदगी भी बन गई, और जिसके ये बात ही समझ में नहीं आ रही, तो बस कुछ नहीं किया जा सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अनलेस ये कि वो बात को समझने की कोशिश करे और उसके मुताबिक फिर अपनी जिंदगी को बनाने की भी कोशिश करे, वरना दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। ठीक है ना, बुत का सनम का विसाल मिलेगा, सनम का विसाल मिलेगा बुत का, और ना ही जो है वो खुदा मिलेगा। तो भाई ये जो कुछ भी है ना, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए नहीं आप कुछ कर रहे हैं, बस फिर इसका कोई फायदा नहीं। तो क्यों, जब अल्लाह के लिए बंदा काम करता है ना, तो फिर उसके लिए मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। ठीक है ना, अपने आप को झुकाना आसान हो जाता है, अपने आप को रोकना आसान हो जाता है, बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। ठीक है, नहीं करता अल्लाह के लिए तो कुछ भी आसान नहीं होता। तो कम्युनिकेशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, फिर उसके बाद दूसरा उनवान था पिक योर बैटल, कि उसूली बातों को चुने, तो वो हमने बाकी पढ़ना था। फरमाते हैं कि दूसरा पॉइंट ये है कि पिक योर बैटल, यानी उसूली बात को चुने। यहाँ पर ये नहीं था कि अब तुम जो है वो बैटल्स लड़ती रहो अपने शौहर के साथ या किसी के साथ भी, बैटल्स लड़ती रहो, ये इसका मतलब नहीं था। ठीक है, बल्कि ये था कि जो भी इख्तलाफात होते हैं, तुम हर इख्तलाफ के ऊपर शुरू मत हो जाया करो, बल्कि बहुत ही सेलेक्टिवली किसी उसूली बात को, किसी बहुत अहम बात को बस उसी के ऊपर डिस्कशन किया करो, वरना हर बात के ऊपर ना किया करो। ये मतलब है पिक योर बैटल का, कि अगर खाविंद से कभी कोई डिस्प्यूट हो ही सही, तो अपनी उसूली बात को समझाने में मनवाने की कोशिश करें, लेकिन हर हर छोटी छोटी बात पर क्रिटिसाइज, तनकीद करना और उसके साथ मूड बनाए रखना अच्छा नहीं होता। जो उसूली बातें हों उनको आप अपनी बैटल समझकर खाविंद के साथ बात करें और उसमें जीतने की कोशिश करें। जिसको समझाया था पिछली क्लास के अंदर कि जीतने की कोशिश का मतलब ये होता है कि जो उसूल हैं मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, कि भाई वो भी उसको मानते हैं आप भी उसको मानती हैं, उसको बतौर दलील के पेश करें, ठीक है, जतलाने की कोशिश ना करें कि मुझे ज्यादा पता है, मैंने यहां भी पढ़ा है, मैंने वो भी पढ़ा है, मेरा ताल्लुक ज्यादा बड़े लोगों के साथ है, मेरे अब्बा जो थे वो ज्यादा बड़े आलिम थे, मेरे अब्बा ज्यादा बड़े जो है वो कोई गवर्नमेंट के ज्यादा ब्यूरोक्रेट थे, या कोई सियासतदान थे, या कोई लीडर थे, या मैंने जो है वो फलानी यूनिवर्सिटी से या फलाने मदरसे से आलिम कोर्स किया हुआ है, इस वजह से मुझे मेरी बात मानो, ये जतलाना कहलाता है। ठीक है, तो ये जतलाने की कोशिश हरगिज ना करें, सिर्फ जीतने की कोशिश करें। जीतने का मतलब जो होता है वो उसूल बयान करें, ये मतलब होता है जीतने का। अच्छा, अक्सर ये देखा गया है कि औरतें शादी के बाद सबसे पहला ये काम करती हैं कि खाविंद की इसलाह करने की कोशिश करती हैं, उनको इसलाह करने का बड़ा शौक होता है। ठीक है, तो ये कम अकली होती है कि भाई जो जिसको अल्लाह ताला ने ये पोजीशन नहीं दी है, तो फिर वो ऊंचे अपने से ऊपर पोजीशन वाले की इसलाह करने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये बात भी उमूमी है, सिर्फ बीवी खाविंद के साथ ये मामला नहीं है, बल्कि शागिर्द और उस्ताद का भी ये मामला है कि शागिर्द उस्ताद की इसलाह करना शुरू कर दे, मुरीद जो है वो अपने शेख की इसलाह करना शुरू कर दे, औलाद अपने माँ बाप की इसलाह करना शुरू कर दे। ठीक है, तो ये तरतीब को उलट देने की बात होती है, तो ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब अकल छोटी होती है, इल्म नहीं होता, बात की समझ नहीं होती, तो फिर ऐसे ही जो है ना वो ऊपर वाले की इसलाह करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इसलाह करने का मतलब ये होता है, अच्छा इसलाह करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि इसलाह करने का मतलब क्या होता है, उस वक्त तक इस जुमले की कोई हैसियत नहीं, इस जुमले का हमें कोई फायदा नहीं होगा कि इसलाह करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भाई क्या मतलब होता है इसलाह करने का? कोई जहन जहन्नुम में जा रहा है, ठीक है, या कोई आग में कूद रहा है, तो क्या आप उसको नहीं रोकेंगे आग में कूदने से? ठीक है, दुनिया की आग आग कहलाती है और आखिरत की आग जहन्नुम कहलाती है, कोई जहन्नुम की तरफ जा रहा है तो अब आप उसको नहीं रोकेंगे क्या जहन्नुम में जाने से? ठीक है, तो हम तो समझते हैं कि यही इसलाह है कि कोई आग में कूदने जा रहा है उसको रोको, कोई जहन्नुम में कूदने जा रहा है उसको रोको, तो यही तो इसलाह है और ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो करनी चाहिए। तो फिर हजरत जी क्यों फरमा रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए? तो फिर इसलाह का मतलब क्या होता है? जो हजरत जी फरमा रहे हैं उसका मतलब क्या होता है? टेलिंग एडवाइस इन अ डायरेक्ट एंड अनकाइंड मैनर लाइक अ मदर। अच्छा, तो मदर जो होती है वो अनकाइंड मैनर में ही बात करती है नहीं, ठीक है, यानी हाँ ठीक है, शोहर और बीवी के मामले में यह है कि बीवी साहिबा जो है वो माँ बनने की कोशिश ना करें, बीवी साहिबा जो है वो शेख बनने की कोशिश ना करें। यहाँ का मतलब क्या होता है इसका कि इसलाह करने का मतलब ये होता है कि आप जो है ना वो अपर हैंड रखते हुए किसी को डांट डपट के जरिए से, ठीक है, या किसी को सख्त लहजे में, सख्त लहजे में जिसको डांट डपट करना भी कह सकते हैं, अगर वो थोड़ा और बढ़ जाए और सख्त हो जाए तो उसको डांट डपट करना कह देते हैं। ठीक है, हत्ता के थ्रेटनिंग, ठीक है, इसलाह करने का जो है ना वो कम दर्जा ये होता है कि थोड़ा सा सख्त लहजे में बात करना, ये कम दर्जा है इसलाह करने का। इसलाह करने का मतलब क्या है? कम से कम सख्त लहजे में बात करना, ठीक है, उससे ज्यादा आप बढ़ जाए तो डांट डपट के जरिए से बात, डांट डपट के साथ बात करना, ठीक है ना, उससे ज्यादा आप ऊपर बढ़ जाएं तो धमकी के लहजे में बात करना कि अगर नहीं करोगे तो ये सजा मिलेगी, ठीक है, अगर नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगी, ठीक है, किसी भी किस्म का, ये नहीं कि मैं मार दूंगी, मैं थप्पड़ मार दूंगी, राइट, नहीं, बीवियां उमूमन थप्पड़ नहीं मारती, ठीक है ना, अगरचे कि अभी रिसेंटली कोई खबर आई थी कि बीवी साहिबा जो है वो ब्लैक बेल्ट होल्डर थी, तो उन्होंने खाविंद की जो है वो पिटाई कर दी, माशाल्लाह उनको कराटे आता था, खाविंद को नहीं आता था, उन्होंने खूब अच्छा बाकायदा, शायद मैंने सुना था कि अखबार में खबर आई थी, ठीक है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। धमकी के फिर दूसरे मतलब होते हैं, धमकी मतलब होता है मैं जो हूँ वो बस अब मैं बातचीत करना छोड़ दूंगी, मैं आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी, मैं आपके किसी रिश्तेदार से बात नहीं करूंगी, मैं जो है वो आपकी मैं किसी बात के ऊपर अमल नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, ठीक है, ये धमकी है, ये होती है मियाँ बीवी के दरमियान की धमकी, ठीक है, तो ये कहलाता है इसलाह करना। ठीक है, क्योंकि इसलाह के अंदर जो है ना फिर सख्त लहजा भी होता है, और इसलाह के अंदर जो है फिर कॉन्सिक्वेंसेस का खौफ भी होता है कॉन्सिक्वेंसेस का। ठीक है, तो हजरत जी जो है ना वो खैर ख्वाही से मना नहीं कर रहे, इसका ऑपोजिट, इसका बल्कि इसकी दूसरी शक्ल क्या होती है जिसके अंदर ना धमकी होती है और ना उसके अंदर जो है वो सख्त लहजा होता है, उसको क्या कहते हैं, प्योर एंड सिंपल खैर ख्वाही कहते हैं, नसीहत। ठीक है, नसीहत, लेकिन नसीहत के अंदर ये मोड नहीं होता। ठीक है, नसीहत का मतलब ये होता है कि बस आप जो है ना वो मैसेज को पहुंचा दें। ठीक है, अच्छा सा बलाहुल मुबीन के अंदाज में कोई मैसेज जो है वो दलाइल के साथ, और यानी ऐसी बात हो जो कि समझ में आ रही हो, वाजह बात हो, वो आप अगले बंदे तक पहुंचा दें, ये खैर ख्वाही होती है। एंड ये सफिशेंट होता है खैर ख्वाही के लिए। ठीक है, ये खैर ख्वाही इसलाह कब बन जाती है, जब उसके अंदर बाकी चीजें भी शामिल हो जाती हैं, सख्त लहजा, डांट टपट, ठीक है, और धमकी, हत्ता के अल्टीमेटली अगर धमकी से भी काम ना चले तो फिर मारपीट भी। ठीक है, अगर धमकी से काम ना चले तो फिर एक्चुअली सजा देना, जिसको कि मारपीट कहा जाता है हमारे, लेकिन वो दूसरे तरीके की भी सजा हो सकती है, टाइम आउट दे देना भी उसकी सजा की एक शक्ल होती है। ठीक है, तो ये फर्क है इन दोनों के दरमियान ना। ठीक है, तो अब अल्लाह ताला ने क्या निजाम बनाया है कि भाई जो इंसानों के दरमियान ऊपर नीचे का एक फर्क रखा है ना, तो उसमें जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वालों के साथ खैर ख्वाही भी करते हैं, ठीक है, और उनको इस्लाह करने की भी अथॉरिटी हासिल होती है अल्लाह की तरफ से। ठीक है, चाहे वो हुक्मरान हो और अवाम के साथ उनका ये मामला हो, ठीक है, चाहे वो माँ बाप हो औलाद के साथ उनका ये मामला हो, चाहे जो है वो शेख हो मुरीद के साथ हो और उस्ताद हो शागिर्द के साथ हो, ठीक है, लेकिन इस्लाह जो है ये नीचे से ऊपर नहीं हो सकती, नीचे से ऊपर खैर ख्वाही हो सकती है। मिसाल के तौर पर घरों के अंदर बहुत बड़ा एक इशू होता है आजकल कि जो दीनदार औलाद दीनदार बन जाती है, ठीक है, तो अब जो है ना वो अपने घर से टीवी को निकालती है, क्योंकि टीवी जो है वो ईमान की टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक इंतहाई खतरनाक मर्ज होता है जिससे कि या तो मौत वाकई हो जाती है या जो है वो इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। तो हमारे मशायख हमेशा से ये कहते हैं कि टीबी तो ईमान की टीबी है, तो जो लोग दीनदार सही मानों में बनते हैं उनको समझ में आता है कि भाई इसके साथ तो दीन नहीं चल सकता, टेलीविजन के साथ तो दीन नहीं चल सकता, वो टेलीविजन को घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन फिर अगर वो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में नहीं थे, कहीं मुल्क से बाहर रह रहे थे, तो अब जो है ना वो उनके माँ बाप आते हैं विजिट करने के लिए उनके घर पे। ठीक है, तो माँ बाप जब विजिट करने के लिए आते हैं तो कहते हैं कि भाई मुझे तो टीवी चाहिए, राइट, और पहले जमाने में तो कहते थे बड़ी टीवी चाहिए, अब जो है वो बड़ी टीवी ना लगाओ, चलो मुझे छोटी टीवी दे दो, ठीक है ना, मोबाइल फोन दे दो। मोबाइल फोन क्या है, ये टीवी है, बल्कि पुराने टीवी से हजार गुना ज्यादा बड़ा टीवी है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हर दुनिया की चीज मौजूद है, यूट्यूब हो या दूसरे पता नहीं कौन कौन से, टिकटॉक वगैरह, राइट। तो अब जो है ये माँ बाप जो है वो टीवी देख रहे हैं, टीवी के ऊपर वो गाने भी सुन रहे हैं, टीवी के ऊपर वो फिल्में भी देख रहे हैं, टीवी के ऊपर एड्स भी आ रहे हैं, टीवी के ऊपर उल्टे सीधे जो है वो उनके सियासी लीडरान के जो है वो तमाशे भी चल रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, तो अब उनकी इसलाह करें या उनके साथ खैर ख्वाही करें। ठीक है, क्या उनकी इसलाह की जा सकती है कि नहीं, उनसे आप फोन छीन लें, ठीक है, या आप उनसे जो है वो सख्ती के साथ बात करें कि नहीं आप ये नहीं कर सकते मेरे घर में, ये मेरा घर है, ये आपका घर नहीं है, आप ये नहीं कर सकते, इसको कहते हैं इसलाह करना। क्या आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या आप उनको धमकी दे सकते हैं कि अगर आपने ये चलाया तो मैं जो हूं ना मैं आपको घर से बाहर निकाल दूंगा, मैं आपको वापस भेज दूंगा, ये धमकी देना होता है, क्या आप ये माँ बाप के साथ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, क्या उनको टीवी चलाने दें, क्या उनको जो है वो अपने बच्चों को जो है वो टीवी दिखाने दें, ठीक है, क्योंकि पोता पोती और नवासा नवासी जो है वो तो जाते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, दादा दादी नाना नानी के पास, और वो जाकर के वो मोबाइल फोन देखते हैं। अब क्या करें भाई, क्या ये करने दें, या जो है वो उनको धौंस धमकी दे करके उनको डांट डपट करके घर से बाहर निकाल दें, नहीं, नहीं कर सकते, इसलाह नहीं कर सकते उनकी। ठीक है, तो अब कोई दरमियान का रास्ता निकालना होगा कि ना तो अपने बच्चों को फुल एक्सपोजर लेने दें जाकर के जो है वो दादा दादी के पास टीवी देखने दें, और ना जो है वो दादा दादी को जो है वो धमकी और थ्रेट कर सकते हैं। ठीक है, दरमियान का रास्ता फिर उसके लिए फिर मशवरा करें अब इल्म वालों से, समझ वालों से, बहुत सारे दरमियान के रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना कि उनको समझा दें, टीवी के नुकसान जो है वो उन तक पहुंचा दें, ठीक है, और बच्चों के ऊपर मेहनत करें कि आपने नहीं जाना है, क्योंकि बच्चे तो आपसे छोटे हैं ना, उनकी तो इसलाह करनी है ना, राइट, उनकी तो इसलाह करनी है ना, वो तो नहीं आपके माँ बाप बन गए, वो तो नहीं आपके दादा दादी बन गए, उनकी तो इसलाह करनी है ना बच्चों की, तो बच्चों को रोकें, बच्चों को समझाएं, बच्चों को ऑल्टरनेटिव दें ताकि वो माँ बाप के टीवी के पास जाकर के ना बैठे। तो जिनकी इसलाह करनी है उनकी इसलाह करें ना, जिनकी इसलाह नहीं कर सकते हैं उनकी क्यों इसलाह करने की कोशिश करें, ठीक है, और फिर कुछ और इस तरह के और भी दरमियानी रास्ते निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ लें कि भाई इसलाह करने की एक तरतीब होती है जो अल्लाह ने बनाई है, उस तरतीब के से हट करके इसलाह नहीं की जा सकती है, अगर करेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगी दुनिया में भी और आखिरत में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फरमाती हैं, फरमाते हैं हजरत जी के, चुनाचे ये खाविंद को एक छोटे बच्चे की तरह डील करना शुरू कर देती हैं, जैसे कुछ औलादें अपने माँ बाप को छोटे बच्चे की तरह डील करना शुरू कर देती हैं जब माँ बाप जो है वो बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, यही ना तरतीब का सारा मसला है ना, वरना माँ बाप के भी वही दो हाथ और दो पैर होते हैं, औलाद के भी दो हाथ और दो पैर होते हैं, खाविंद के भी यही होते हैं। ठीक है, लेकिन जिसको अल्लाह का ख्याल नहीं होता, जो अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारना नहीं जानता और उसने इल्म नहीं हासिल किया होता इन बातों का कि भाई अल्लाह ने क्या तरतीब बनाई है, उस तरतीब के साथ क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो यही करता है, फिर अपने से बड़े को जो है वो छोटे बच्चे की तरह डील करना शुरू करता था। कुछ माशाल्लाह आजकल के मुरीद और मुरीदाएं भी ऐसी होती हैं, राइट, आजकल के तो मुरीद और मुरीदाएं भी ऐसी होती हैं जो कि अपने शेख को जो है वो छोटे बच्चे की तरह डील कर रही होती है, राइट, जमाना यहां पहुंच गया, पहले तो माँ बाप और औलाद का मसला होता था या बीवी और खाविंद का मसला होता था, अब तो उस्ताद और शागिर्द के दरमियान भी यही शुरू हो चुका है, पीर और मुरीद के दरमियान भी यही शुरू हो चुका है, जहालत बढ़ गई है ना, पहले जहालत थी तो कम थी, अब जहालत और बढ़ गई है, बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, तो यही होता है कि जी इसलाह करने का बड़ा शौक होता है, चुनाचे खाविंद को या अपने से ऊपर वाले को छोटे बच्चे की तरह डील करना शुरू कर देती हैं, खाविंद बच्चा नहीं होता, ठीक है, क्या कहते हैं, खाविंद बच्चा नहीं होता, वो एक एडल्ट अडल्ट मर्द होता है, वो कुछ बातें तो आपकी तस्लीम कर लेगा लेकिन 100% आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक ढल जाना ये आसान काम नहीं है, ठीक है, यानी ये नहीं हो सकता, आसान काम नहीं है का मतलब यहां पर क्या कि ये नहीं होता कि वो आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक ढल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप उल्टा काम कर रही है ना, उल्टी गंगा बहाने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, वो कोई मोम की नाक नहीं है कि जिसे जैसे चाहे उसको फेर दें, ठीक है, वैक्स की बनी हुई कोई डॉल हो तो उसके ऊपर आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं उसको, ये तो इंसान तो ऐसे नहीं होता है ना, इसलिए ये गलती कभी भी ना करें कि अपने खाविंद को ढालने की फौरन कोशिश करें। हाँ, एक सूरत है कि खाविंद के साथ वफा दिखाएं, मोहब्बत दिखाएं, उसको अपनी नेकी और तकवा से मुतासिर करें, हत्ता कि खाविंद के दिल में आपकी मोहब्बत भर जाए, जब मोहब्बत भर जाएगी तो मोहब्बत की वजह से वो आपका गुलाम बन जाएगा, मोहब्बत की वजह से वो आपकी हर बात को मानेगा, मोहब्बत के बगैर आप खाविंद से अपनी कोई बात मनवा नहीं सकती। ठीक है, तो इसको भी जनरलाइज करके ही समझना चाहिए कि आप अपने ऊपर वाले से ना इस तरह से बात ही मनवा सकती, हाँ अपनी खिदमत के जरिए से, अपनी जो है वो अकलमंदी के जरिए से, इवन बड़ा कोई उस्ताद भी क्यों ना हो, शेख भी क्यों ना हो, ठीक है, माँ बाप भी क्यों ना हो, जब नीचे वाले यानी औलाद हो या शागिर्द हो या मुरीद हो या आवाम हो, जब अपने ऊपर वाले को इस तरीके से उसके दिल को कायल कर लेती है, मायल कर लेती है, तो फिर उसके बाद फिर ऊपर वाले भी नीचे वाले की बात मानना शुरू कर देते हैं, क्या मतलब उनसे मशवरा करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और उनकी जो है वो राय को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, यही मामला जो है वो भी खाविंद का भी है। ठीक है, तो अब जो है ना वो आजकल जाहिर है ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हुई हुई है कि हर बंदा अपने आप को अफलातून समझता है, ठीक है, जहालत की वजह से जितना जाहिल होता है उतना ज्यादा अपने आप को अफलातून समझता है, ठीक है, और बड़ों से जो है वो ज्यादा इल्म वाला और ज्यादा जो है वो समझ वाला समझता है, तो वो फिर दोस्त धमकी के जरिए से बड़ों के साथ डील करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बड़े जो है ना, अगर उनके पास फिजिकल ताकत होगी, अगर उनके पास फिजिकल ताकत होगी, तो फिर वो फिजिकली आपको जो है ना वो मजा चखाएंगे। ठीक है, अगर उनके पास फिजिकल ताकत होगी तो फिर वो फिजिकली आपको मजा चखाएंगे, यानी आपको फिर ठीक करेंगे। ठीक है, अगर आप नीचे से ऊपर वाले के साथ धौंस धमकी करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर वाले पावरफुल हैं, फिर वो आपको मजा चखाएंगे, वो आपकी बात मानना नहीं शुरू हो जाएंगे, वो आपकी बात से कन्विंस नहीं हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो है वो इसलाह करने की कोशिश कर रही है ना, वो आपकी बात से कन्विंस, हाँ आप खैरख्वाही कर रहे होती तो और बात होती, फिर वो आपकी बात मान सकते थे, लेकिन आप तो इसलाह के ऊपर उतर आई हैं। तो अब क्या होगा, वो आपको मजा चखाएंगे। या अगर उनके पास फिजिकल ताकत नहीं है, ऐसा भी तो होता है ना कि बड़े बन तो गए हैं लेकिन फिजिकल ताकत नहीं है। ठीक है, जैसे माँ बाप बड़े हैं ना, लेकिन माँ बाप जो हैं जब बूढ़े हो जाते हैं उनके पास फिजिकल ताकत तो नहीं होती है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ हुकूमतें भी ऐसी होती हैं, बड़ी कमजोर हुकूमतें होती हैं। ठीक है, तो वो हुकूमत तो है लेकिन कोई ऐसी ताकत नहीं है उनके पास। ठीक है, उसी तरह से और मामलात में, शौहर और बीवी के मामलात में ऐसा बहुत होता है कि शौहर जो होता है वो किसी वजह से दबा हुआ होता है। ठीक है, किसी वजह से दबा हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर घर दामाद टाइप का कोई शौहर है। ठीक है, तो अब जो है ना वो उसके ऊपर आपके माँ बाप का जो है वो एहसान है कि जी उन्होंने उसको नौकरी दिलवाई है, उन्होंने उसको जो है, आपके माँ बाप ने उसको जो है वो अमेरिकन सिटीजनशिप दिलवाई है ना। होता है ना कि भाई बेटी की शादी जो है वो अमेरिका में तो हो नहीं रही थी तो पाकिस्तान से रिश्ता लेकर के आते हैं। ठीक है, और फिर उसको जो है वो अमेरिकन सिटीजनशिप दिलवा देते हैं और फिर उसके ऊपर एहसान जतलाते हैं, या सऊदी इकामा दिलवा देते हैं तो उसके ऊपर फिर एहसान होता है उनका। ठीक है, तो अब जो है ना वो शौहर दब के रहता है, तो बीवी साहिबा समझती हैं कि अब मैं शौहर बन गई हूं क्योंकि मेरे बाप ने जो है वो मेरे शौहर के ऊपर एहसान किया, तो वो समझती हैं कि अब वो शौहर बन गई हैं, हालांकि वो शौहर नहीं बनी होती। ठीक है, तो अब जो है ना वो सख्ती से बात करती हैं, धमकियां भी देती हैं, तो अब शौहर साहब जो है वो फिजिकली तो उनको मजा चखा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि वो खुद जो है वो मजबूर है। तो अब क्या होता है, अब वही होता है जो इस किस्म की हर सिचुएशन में होता है। ठीक है, कि जब कोई खुल करके जो है वो सजा नहीं दे सकता, खुल के जो है वो लड़ाई नहीं कर सकता, तो अब जो है ना वो गुरिला वॉरफेयर के ऊपर आ जाता है, गुरिला वॉरफेयर के ऊपर। और गुरिला वॉरफेयर क्या होती है, छुप के हमला करना। ठीक है, बजाहिर जो है वो बजाहिर जो है वो कमजोर बन के रहना, लेकिन ऐसी मौके के ऊपर हमला करना, ऐसे मौके के ऊपर नुकसान पहुंचाना कि जिस वक्त दुश्मन जो है ना वो तैयार ना हो, होशियार ना हो, उस वक्त नुकसान पहुंचाना, इसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। ठीक है, इसी को जो है वो, जैसे उन्होंने लिखा है यहां पर, कीना पालना भी कहते हैं। फिर दिल में कीना पालता है और फिर वो कीना किसी ना किसी मौके के ऊपर जब मौका मिलता है उस वक्त वो निकलता है। ये किस वक्त होता है, जब आपने किसी को अपना दुश्मन बना लिया या कोई आपका दुश्मन बन गया लेकिन वो खुल करके आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकता, उस वक्त जो है ना फिर ये वाली चीज शुरू हुई हुई होती है, वो आपसे एग्री नहीं करता वो दुश्मन, वो आपकी बात को तस्लीम नहीं करता, बल्कि ये हो जाता है फिर। ठीक है, तो उसी बात को समझा रहे हैं कि भाई ऐसे मत करें ना। ठीक है, तो बात करें तो उसूल के साथ करें, दलाइल के साथ करें, अच्छे अंदाज में करें और मोहब्बत का अंदाज इख्तियार करें। ठीक है, तो फिर जो है ना तो वो आपको फिजिकली मजा चखाएगा और ना जो है वो फिर आपको आपके साथ कीने वाला मामला करेगा। ठीक है, ये उसूल की बात है, ये हर जगह चलती है, बीवी शौहर के रिलेशनशिप में भी चलती है और हर इस किस्म की ऊंच नीच वाली रिलेशनशिप जो कि अल्लाह ताला ने हर जगह दुनिया के अंदर बनाई है। अल्लाह ताला ने इंसान बजाहिर सारे एक जैसे बनाए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानी मुआशरे के अंदर ऊंच नीच की तफरीक रखी है। क्यों? इसलिए कि ये आजमाइश की जगह है, ये दुनिया आजमाइश की जगह है, ये जन्नत नहीं है ना ये जहन्नुम है, ये आजमाइश की जगह है। ठीक है, इसी वजह से लगाना ने नीच रखी है। अच्छा तो यहाँ पे खत्म कर दें एक पैराग्राफ थोड़ा सा, इसलिए कि फिर वो हदीस से इसकी दलील आती है, तो बस थोड़ा सा ये पढ़ के क्लास खत्म करते हैं कि क्रिटिसिज्म यानी तनकीद से इज्तनाब करें, करनी भी हो तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यानी तामीरी तनकीद होनी चाहिए, और तनकीद के साथ साथ खाविंद की जो अच्छी बातें हैं उनकी तारीफ भी करें। आमतौर पर यह देखा है कि किसी एक बात पर खफा हुई तो तस्वीर को ऐसा पेंट करेंगी कि लगेगा कि जैसे इस जैसा बुरा खाविंद तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए, जो उसकी अच्छी बातें हैं उनको भी साथ साथ तस्लीम करें। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म जो है ना, क्रिटिसिज्म एक तो बराए क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, बस जो है ना वो किसी को जलील ही करना है तो उस वजह से उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर की कोई पॉजिटिव चीज शामिल ना हो, पॉजिटिव चीज को शामिल करके फिर जो है वो बात करनी चाहिए। इसकी बेहतरीन मिसाल हजरत अब्दुल्ला बिन उमर हजरत तारान, छोटी उम्र के एक सहाबी थे, कई मरतबा रात को सोते तो नींद गहरी हो जाती थी, तो नबी अलैहिस्सलाम को पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निअमर रजुलु अब्दुल्लाही लव कान युसल्ली मिनल लैली, कि अब्दुल्ला कितना अच्छा आदमी है अगर तहज्जुद की पाबंदी करना शुरू कर दे, ठीक है, या कितना अच्छा होता कि अगर तहज्जुद की भी पाबंदी करता। तो आप देखें कि इस बात में कितनी गहराई है। सीधा भी कहा जा सकता था कि अब्दुल्ला आप तहज्जुद की पाबंदी क्या करो और रात को जाया करो, हालांकि देखिए नबी अलैहिस्सलाम तो सबसे ऊंचे थे, आप से ऊंचा तो कोई होता ही नहीं, ठीक है, तो यानी कोई है ही नहीं नबी अलैहिस्सलाम से ऊंचा इंसानों में देखा जाए या मखलूक में देखा जाए। तो उन्होंने भी जो है वो अपने छोटे की जो है वो असलाह ऐसे करी कि किसी पॉजिटिव बात का भी जिक्र कर दिया कि कितना अच्छा बनता है अगर रात को भी जागा करता, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्रिटिसाइज करने से पहले उनकी खूबियां थी उनको हाईलाइट किया कि अब्दुल्ला कितना अच्छा आदमी है, एक मैसेज पहुंचा दिया कि मेरे दिल में आपके बारे में एक मुस्बत तासुर है, और साथ ये भी कह दिया कि कितना अच्छा हो कि ये साथ में तहज्जुद की भी पाबंदी करे, चुनाचे इसके बाद उनकी तहज्जुद कजा नहीं होती थी। ठीक है, तो यही चीज जो है वो और भी ज्यादा किसी नीचे वाले के ऊपर अप्लाई होती है कि वो अपने ऊपर वाले के साथ जो है वो इस तरीके से बात करे। ठीक है, किसी को कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो तो यहाँ पे आप देख। कोई सवाल या कोई कमेंट अगर है तो आप यहाँ पे लिख सकती हैं, वरना अपना क्लास चलें बाकी इंशाल्लाह क्लास में पढ़ेंगे। वा आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।